अनगार धर्मामृत लेक्चर नंबर 3। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वर्चायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं, प्रणम्य वीरं परमावबोधं, आशाधरो मूढविबोधनाय सोपज्ञधर्मा शास्त्र पदानि किंचित् प्रकटीकरोति। पंडित आशाधर जी लिखित यह सागर धर्मामृत नामक ग्रंथ है और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 6 पर। 6 यहाँ बात यह हो रही थी कि मोक्ष क्या है उसकी चर्चा की, और जिन्होंने मोक्ष अवस्था प्रकट की है ऐसे जो सिद्ध भगवान जो है, तो वो मेरे में, उन्होंने क्या लिखा, मैं उस सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकूं। यहाँ तो कहते कि शुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा में स्थिर करके वगैरह वगैरह जो बात की थी, उसकी जो नौ आगम की बात की थी उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। एक कल का पैराग्राफ फिर दोबारा पढ़ेंगे। देखो कुछ शब्द है ना ऐसे, आपने कभी सुने नहीं होंगे, अटपटे लगते हैं, इनकी वाक्य रचना भी थोड़ी ऐसी कठिन लग रही है। हम फिर दोबारा यहाँ सारांश से पढ़ेंगे, 6 नंबर के पृष्ठ पर दूसरा पैराग्राफ। सारांश यह है कि अंतरंग व बहिरंग कारण के बल से सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, इसकी चर्चा हमने की थी, उसमें निमित्त उपादान भी लेना है और अंतरंग बहिरंग निमित्त भी ले लेना दोनों। फिर समस्त परिग्रह को त्याग कर, समस्त में भी अंतरंग बहिरंग परिग्रह की हमने चर्चा की थी। सदा सम्यक शुद्ध ज्ञान की भावना में तत्पर रहते हुए इसमें अंतरंग में आत्मलीनता और बाह्य में शुद्ध ज्ञान का अभ्यास। समस्त इंद्रियों और मन को अपने अपने विषयों से हटाकर अपनी शुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा में स्थिर करके उसमें भी तृष्णा रहित होकर घाती कर्मों को नष्ट करके, यानी अरिहंत अवस्था हुई, स्वाभाविक निश्चल चैतन्य स्वरूप होकर पुनः अघाती कर्मों को भी नष्ट करके, अभी यानी 14वें स्थान पार हुआ ना, सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई, लोक के अग्रभाग में स्थिर होकर, सिद्ध भगवान अंतिम तनुवात वाले में विराजमान रहते हैं, जो सदा इन्हें अभी कायम के लिए केवल ज्ञान केवल दर्शन सम्यक और सिद्धत्व भाव से शोभित होते हैं, वे भगवान सिद्ध परमेष्ठी। अब ये एक शब्द डालेंगे हम आगे, क्योंकि मेरे में स्वात्मा का दर्शन देवे, मेरे में स्वात्मा का दर्शन देवे, उसके लिए एक बात बताए कि नौ आगम भाव रूप से। तो ये नौ आगम भाव रूप क्या होता है अरविंद भाई, आपको मालूम है? घर में नहीं, देखो ये नए की बात ना? आप पढ़े, आप बोलते हैं, बोले। देखो ये जो निक्षेप हमने देखे ना, निक्षेप कौन कौन से देखे हैं? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो नाम निक्षेप तो मालूम है, कोई नाम रखना ये नाम निक्षेप है। स्थापना यानी किसी अन्य चीज में अन्य की कल्पना करना, स्थापना करना, उसको स्थापना निक्षेप कहेंगे हम। फिर द्रव्य निक्षेप किसको कहना? तो द्रव्य में यानी वो भूत या भविष्य की पर्याय की संबंध में बात होती, एक बात। द्रव्य निक्षेप के दो भेद है, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। आगम में उस जिस पर हम निक्षेप लगा रहे हैं। अब हम यहाँ सिद्ध परमेष्टि के ऊपर लगा रहे हैं या श्रुत ज्ञान के ऊपर लगा रहे हैं, तो उस विषय को उसे संबंधी आगम का जिसको अभ्यास है उस जीव को लेना है, तो उस जीव को वो द्रव्य में उपयोग रहित लेना कि उन ग्रंथों का अभ्यास तो है परंतु वर्तमान में उसमें उपयोग नहीं लगा, और उसको जानने वाला जीव तो उसको नो आगम द्रव्य निक्षेप कहेंगे उस जीव को। आगम
द्रव्य
अभी श्रुत ज्ञान संबंधी उसने आगम पढ़ा है, कर्म संबंधी आगम पढ़ा है, अभी हम कर्म के ऊपर अगर निक्षेप लगाए कर्म के ऊपर आगम कर्म निक्षेप द्रव्य कर्म कहेंगे आगम से उस जीव को कहेंगे जिसने कर्म संबंधी शास्त्र पढ़ा है। अभी हम सिद्ध भगवान पर लगा रहे हैं, यानी सिद्ध भगवान संबंधी जो आगम है आगम में उनका जो स्वरूप बताया है उसका जिसने अभ्यास किया है उस जीव को कहेंगे। नो आगम यानी जिसने नहीं पढ़ा है उसकी बात। अभी उसके भी बहुत सारे भेद हैं, हमने पहले देखा था ना धवला में बहुत विस्तार से उसका अभ्यास किया था हमने नो आगम और आगम और नो आगम में। नो आगम में तो फिर ज्ञायक शरीर यानी जानने वाले जीव के शरीर को नो आगम का, फिर तद व्यतिरिक्त यानी हाँ और भावी यानी भविष्य में, अभी तो जान रहा है भविष्य में जो शरीर धारण करेगा उसको भी लिया, और तद व्यतिरिक्त इनको छोड़कर अन्य चीजों को नो आगम कहते हैं, यानी आगम संबंधी कोई उसमें बात नहीं है। ऐसे भाव निक्षेप में भी लगाते हैं, इसलिए ये जरा कठिन शब्द मैंने बोला नहीं अर्थ यहाँ बताना कठिन हो जाता है, तो कहते यहाँ हम अभी पढ़ेंगे।
सिद्ध भगवान संबंधी जिसने आगम पढ़ा है
उसको आगम द्रव्य निक्षेप से सिद्ध कहेंगे, उस जीव को जीव जीव को आगम द्रव्य निक्षेप से हम उसको सिद्ध कहेंगे। और भाव निक्षेप में भी यानी उसको क्या कहेंगे आगम द्रव्य सिद्ध उस जीव को कहेंगे आगम द्रव्य सिद्ध। इसलिए ये थोड़ी अटपटी बात है, ये पूरा एक विषय ही हमारा वो तीन चार दिन चल रहा था ये आगम नो आगम संबंध। आप थी ना तभी देवला के पहले भाग में अपना मिला था विषय, आप भी थी। हम यहाँ फिर एक वाक्य पढ़ेंगे, अभी नो आगम को थोड़ा गौन करेंगे। वे सिद्ध परमेष्ठी मेरे में स्वात्मा का दर्शन देवे, वो कुछ देने वाले तो नहीं है, है ना, तो मैं अपने आत्मा का दर्शन करूं। कैसे आत्मा का, जो स्वभाव रूप जो है जैसे सिद्धों की प्रकट प्रिया है जैसे उनका स्वभाव है वैसे मेरा स्वभाव है, तो उनका दर्शन कब होगा जब आत्मा आत्मा में लीन होगा, यानी मैं स्वयं अपने में लीन हो जाऊं तो सिद्ध भगवान ने मुझे दर्शन दिया ऐसा हम कहेंगे। अर्थात मैं उस सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकूं, ये कब संभव है, सिद्ध जैसे जो स्वभाव है उसका लक्ष्य करके उसी में एकराग होगे तो पर्याय में वैसे स्वभाव पर्याय प्रकट होगा। आगे के चलेंगे भी हम अर्हंता आदि के गुणों में सभी प्रकार का अनुराग शुभ परिणाम रूप होने से, ये अर्हंत आदि में किस किस को लेना हम आदि, हाँ पंच परमेष्ठी क्योंकि अरिहंत को शुरू में रखते हैं ना, हम अरिहंतानंद से शुरू करते हैं तो पांचों परमेष्ठियों को हम उसमें आदि में ले सकते हैं। अरिहंत आदि के गुणों में हम कहते हैं गुणों में अनुराग वही भक्ति है, तो सभी प्रकार का अनुराग शुभ परिणाम रूप होने से, अरिहंत आदि की भक्ति क्या है शुभ शुभ परिणाम, अशुभ कर्म प्रकृतियों में रस की अधिकता का उन्मूलन करके उपकरक हुआ करके, क्या कहना चाहते हैं, जो अशुभ कर्म पहले बंधे थे या अभी वर्तमान में भी बंधे, जब अरिहंत की भक्ति कर रहे हैं तो अरविंद भाई कुछ अशुभ कर्म बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे, आप क्या कह रहे हैं,
अगर मिथ्यात्व जी होगा तो मिथ्यात्व,
अरे हम समय दर्शन की बात कह रहे हैं,
जो जितना राग द्वेष होता है
हाँ, ज्ञानावरण बन रहे दर्शनावरण में वो तो सारे अशुभ की कर्म है, ख्याल में आती है वो तो बनते हैं। तो कहते ये शुभ परिणाम रूप भक्ति है, अशुभ। अभी हम दो बातें हैं, नए बंधने वाले कर्म और ऑलरेडी बंधे हुए कर्म। तो ये अरिहंतादि की भक्ति के परिणाम के कारण ये जो अशुभ कर्म प्रकृतियां है उनका रस का अर्थ होता है अनुभव, फल देने की शक्ति, उसकी इंटेंसिटी। तो उस रस की अधिकता का उन्मूलन करके, अधिकता यानी जो अधिक रस यानी अधिक अनुभाग बन जाता है, किसमें? अशुभ में, शुभ में नहीं। शुभ तो प्रकृतियां भी बंधेगी और उसमें अनुभाग भी अधिक बंधेगा, क्योंकि विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, शुभ परिणाम हो रहे हैं। जहां कषाय की मंदता कहो या देवशास्त्र गुरु के प्रति अनुराग कहो, तो वहां क्या हो रहा है? शुभ प्रकृतियां बन रही है जिसमें अनुभाग ज्यादा है। अशुभ प्रकृतियां कुछ तो बंधेगी, जैसे ज्ञानावरण दर्शन तो बनती रहती है, परंतु उनमें अनुभाव कम बंधेगी। और जो ऑलरेडी बंधी हुई अशुभ प्रकृतियां हैं उनका अनुभाव घटेगा, कम होगा, कम होकर उदय में आएगा। तो कहते उनके अधिकता का उन्मूलन करके, मिला शशांक देख, मिला वांछित अर्थ को प्राप्त करने में सहायक होता है। ये वांछित अर्थ, वांछित है ना, जो इच्छा करते हो वांछित, तो हम कहेंगे अच्छा है ना, भक्ति करेंगे, हमें क्या इच्छा है? पैसे कमाने की। अच्छा, उस इच्छा की बात नहीं है यहाँ। उनके गुणों में जिसके अनुराग है उनके तो उन जैसे बनने की इच्छा है, तो उसमें प्राप्त करने में सहायक होता है। इसलिए विचारशील पूर्वाचार्य अपने ज्ञान संबंधी दानांतराय कर्म को और श्रोताओं के ज्ञान संबंधी लाभांतराय कर्म को दूर करने के लिए, ये क्या क्या बताए, पहली बार ऐसी बात सुनी मैंने। देखो क्या कह रहे, आचार्य ज्ञान का दान कर रहे हैं तो उस संबंधी ज्ञान दानांतराय का अनुभव कम कर रहे, ये वो भी अप्रशस्त प्रकृति है अंतराय कर्म। तो कहते ज्ञान संबंधी दानांतराय कर्म को दूर करने के लिए, और श्रोताओं को क्या हो रहा है, ज्ञान का लाभ हो रहा है, तो उनके ज्ञान संबंधी लाभांतराय। देखो हम हमेशा पैसे के ऊपर घटित करते हैं, दान देना ने हम दान देना चाहते थे, फिर किसी ने रोक लगाया तो हम कहेंगे वो तो दानांतराय का हो गया, हमें पैसे मिलने थे, क्या हुआ, बैंक में स्ट्राइक हुआ तो हमारा पैसा हमको नहीं मिला। उदाहरण तो देने के लिए ऐसा कि यहाँ तो ज्ञान संबंधी लगा है, श्रोताओं को तो लाभ हो रहा है ज्ञान का, तो कहते उसको दूर करने के लिए अपने अपने शास्त्र के प्रारंभ में अरहंत आदि समस्त पंच परमेष्ठियों का, यानी ये मंगल क्यों कहते हैं उसकी बात चल रही है। ग्रंथ के आदि में यानी शुरुआत में मंगलाचरण कहते हैं पंच परमेष्ठियों को या एक परमेष्ठी को या किसी ज्ञान की भी अधिकता के उसका भी गुणगान करेंगे, या केवल ज्ञान की महत्ता पर, तो क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ लिखा कि आचार्य अपने ज्ञान संबंधी दानांतराय कर्म को दूर करना चाहते हैं और श्रोताओं के ज्ञान संबंधी लाभांतराय को दूर करना, यानी हमें ज्ञान दान हो सके और उनको ज्ञान का लाभ हो सके, इसलिए प्रारंभ में शास्त्र के प्रारंभ में अरहंत आदि समस्त पंच परमेष्ठियों का या उनमें से किसी एक का अथवा उनके गुणों का इच्छानुसार संस्तवन रूप, संस्तवन स्तवन और संस्तवन, अच्छा स्तवन, सम्यक स्तवन, स्तवन यानी उनका गुणगान गाना है, उसको स्तवन कहेंगे, मंगल करते हुए पाए जाते हैं। ये मंगल क्यों किया जाता है उसकी ये बात चल रही है। इस शास्त्र के प्रारंभ में भी ग्रंथकार ने अपने और दूसरों के विघ्नों की शांति के लिए सर्वप्रथम सिद्धों का, उनके पश्चात अरहंत आदि का विनय कर्म नांदी मंगल रूप से किया है। विनय कर्म ने विनय करने का कार्य किया, उसको विनय यानी वो कर्मों की बात नहीं, आठ कर्मों की। हाँ, नांदी मंगल, ये नांदी शब्द अन्य मराठी लोगों में होते हैं नांदी, तो नाटक की शुरुआत में नांदी करते हैं ना। हाँ तथा जो जिस गुण का प्रार्थी होता है, प्रार्थी ने प्रार्थना करने वाला, नांदी यानी शुरुआत में जो ये जो मंगल रूप से कुछ गाया जाता है उसको नांदी कहते हैं, या नांदी यानी शुरुआत करना, उसकी नांदी करना, मराठी में ये शब्द प्रचलित है। नांदी यानी वो उसकी शुरुआत प्रारंभ, यानी क्यों ना नांदी मंगल रूप, यानी प्रारंभ में मंगल रूप, जिसको हम आदि दीपक रूप से भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन
आगे क्या घंटा बजाने वाला है वो अपनी भाषा में इंट्रोडक्शन कहो
बराबर। आगे पढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ।
तो ये आपको खुद ही बात का उदाहरण है,
तथा जो जिस गुण का प्रार्थी होता है वह उस गुण वाले का आश्रय लेता है। क्या कहते हैं, जिसको जिसमें रुचि है, जिसको क्रिकेट में रुचि है तो अच्छा क्रिकेटियर जो है उसके प्रति उसको उसके गुण वालों का आश्रय लेता है, आश्रय लेता है ना उसको फॉलो करेंगे उसको, हाँ उसके प्रति अहोभाव होगा। जिसको संगीत में रुचि है तो जो संगीत में जो कुछ टॉप मोस्ट है उनके वो अच्छे गुणगान करेंगे। इस नियम के अनुसार चूंकि ग्रंथकार सिद्ध परमेष्ठी के गुणों के प्रार्थी है, यानी वो अपने में सिद्ध जैसे पर्याय प्रकट करना चाहते हैं उसके प्रार्थी है, अतः प्रथम सिद्धों की वंदना करते हैं तथा उनकी प्राप्ति के उपायों का उपदेश करने वालों में सबसे ज्येष्ठ अरहंत परमेष्ठी होते हैं। सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है परंतु ये सिद्ध भगवान तो अभी मोक्ष अवस्था रूप से विद्यमान है और लोक के अग्रभाग में विराजमान है, यदि अरहंत उनका स्वरूप नहीं बताते, उपाय नहीं बताते, वो तो मोक्ष प्राप्त करके चले गए ना, हमें कैसे वो उपाय मिलता यदि अरहंत भगवान स्वयं उसको नहीं कहते, यदि उनके उपदेश के अनुसार गणधर उसका उपदेश ये ग्रंथों की रचना नहीं करते, यदि वो परंपरा से आचार्यों के द्वारा हमारे तक नहीं होता तो हमें ये उपाय कैसे मिलता। तो कहते कि उपदेश करने वालों में सबसे ज्येष्ठ अरहंत परमेष्ठी होते हैं, अतः सिद्धों के पश्चात अरहंत आदि का भी स्मरण करते हैं, कहा भी है। सत्रवां श्लोक वार्तिक में नीचे हम इसको पढ़ेंगे, देखो लास्ट फुट नोट में, अभिमत फल सिद्धेरभ्युपाय सुबोध प्रभवति सच शास्त्रात् तस्य चोत्पत्तिराप्तात् इति भवति सपूज्यस्तत्प्रसाद प्रबुद्धैर् नहि कृतम् उपकारम् साधवो विस्मरन्ति। अंत में क्या क्या है, किया हुआ उपकार साधव यानी साधु यानी सज्जन, साधु यानी वो मुनि राक्षस की बात नहीं है, सज्जन जो है वो किया हुआ उपकार कभी नहीं भूलते। तो क्या, तो अभिमत फल सिद्ध है अभ्युपाय सुबोध, यानी जो हम जो फल चाहते हैं उसके अभ्युपाय के जो सुबोध यानी ज्ञान प्रभवती सो शास्त्र, तो वो शास्त्र से हमें उपलब्ध होता है। तस्य च उत्पत्ति आपता, और ये शास्त्र की उत्पत्ति किससे हुई, तो आपता यानी अरिहंत भगवान से। इति भवति सह पूज्य, इसलिए वे पूज्य है। तत्प्रसादा प्रबुद्ध ही न, और हम उनके द्वारा उनके प्रसाद से नहीं, उनके प्रसन्न होने से कहो, उनके प्रसाद से कहो, ये कुछ देने वाले तो है नहीं है, पर उनके निमित्त से हम प्रबुद्ध हुए, हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए कहते नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती। और आगे अर्थ दिया ही है, हम खाली वो संस्कृत से ही लगाना चाहते थे, यहाँ हम देखेंगे सात नंबर पुष्प पर उसका अर्थ दिया। इष्ट फल की सिद्धि का उपाय, अभमत फल सिद्धे है सम्यक ज्ञान से प्राप्त होता है, सुबोध सम्यक ज्ञान शास्त्र से प्राप्त होता है। सोचो शास्त्र, और शास्त्र की उत्पत्ति आप्त से होती है, तस्य च उत्पत्ति आप्तात्। इसलिए आप्त के प्रसाद से प्रबुद्ध हुए लोगों के द्वारा, आप्त के प्रसाद से प्रबुद्ध हुए ने आप्त के उपदेश के कारण जो ज्ञानी हुए है, जो स्वयं जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, उनके द्वारा आप्त पूज्य होता है। क्योंकि जिनके द्वारा ये ऐसा मोक्ष जैसा फल मिले, उसका उपाय जो बतावे, तो उनके प्रति कितना अहोभाव आना चाहिए। लौकिक में थोड़ी मदद करते हैं तो उसका भी हम उपकार जिंदगी भर भूलते नहीं है। तो इसलिए कहते उन लोगों के द्वारा आप तो पूज्य होता है, क्योंकि साधुजन किए हुए उपकार को भूलते नहीं है। अज्ञानी भी भक्ति पूजा करता है और ज्ञानी भी करता है, और अज्ञानी तो बहुत नाच गा कर भी करते हुए दिखाई देगा, परंतु तो उसने तो कुछ पाया नहीं ना उनसे। तो सच्ची भक्ति किसको होगी? उस उपदेश के द्वारा जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, उनको तो कैसे अहोभाव होगा उनके प्रति, कि उनके कारण ये मोक्ष मार्ग शुरू हुआ है। इसके सिवाय शीघ्र मोक्ष के इच्छुक को परमार्थ से मुक्त आत्माओं की ही भक्ति करनी चाहिए, यह उपदेश देने के लिए ग्रंथकार ने प्रथम सिद्धों की आराधना की है, कहा भी है नीचे पंचास्तिका। सपयत्थम तीर्थयरम अधिगत बुद्धि सूत्रो स दूरतरम निर्वाणम संयम तव संतोतस तम्मा निवद्य कामो निसंगो निम्ममोय भविय पुनो सिद्धेश पुनरिभक्ति निर्वाणं तेन पपोदी। ये पंचास्तिक काय की गाथा यहाँ दी है, तो उसका अर्थ हम ऊपर पढ़ेंगे। संयम और तप से संयुक्त होने पर भी जिसकी बुद्धि का रुझान का ढलान, मराठी में कल कहते ना, नव पदार्थ और तीर्थंकर की ओर हो, झुकाव हम कहीं झुकाव रुचि, तथा जो सूत्रों में रुचि रखता है उसका निर्वाण बहुत दूर है। क्या कहा? किसमें रुचि रखना है? घर संसार में नहीं, यानी उसी में वो शुभ भाव में अटका, ये लगाना, क्योंकि संयम और तप से संयुक्त है, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती है, ऐसा लिया क्या? उसको नहीं लिया, निर्वाण दूर बहुत दूर है। अच्छा, यानी बाह्य में तप अंगीकार किए है और वो शास्त्रों में, शास्त्रों का भी भरपूर अभ्यास है, ऐसा जीव लिया। इस हाँ हाँ सर्व आगम धर्म ऐसा यहाँ लिया। इसलिए मोक्षार्थी जीव परिग्रह और ममत्व को छोड़कर, यानी केवल बाह्य की चीजें नहीं है, मिथ्यात्व रागादि वो तो मूल में लेना, छोड़कर सिद्धों में भक्ति करता है, उससे वह निर्वाण को प्राप्त करता है। सिद्धों की भक्ति करना इन्हें अपने अंतरंग में सिद्ध स्वभाव में लीन हो जाना, वही सच्ची भक्ति है। लिखा है अर्थात शुद्ध आत्मद्रव्य में विश्रांति ही परमार्थ से सिद्ध भक्ति है। देखो ये मूल ग्रंथों में बातें बताई है, लोगों को लगता है खाली आत्मा 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 करने से क्या होगा, उसी के द्वारा, उस स्थिरता के ही द्वारा मोक्ष मार्ग शुरू होगा, उसी से निर्वाण पद प्राप्त होता है। तो कोई पूछेगा तो बाह्य में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ख्याल में आती बात? वो तो होता है भूमि के अनुसार, वो सहज होता है, उसको उसकी रुचि भी नहीं रहेगी, वो बाह्य में वैसे परिणाम भी सहज आएंगे। परंतु अज्ञानी क्या सोचता है, वो ऐसा धारण करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। इस प्रकार सिद्धों के गुणों की प्राप्ति का इच्छुक होने से प्रथम सिद्धों की आराधना करके ग्रंथकार आगे उसके उपायों का उपदेश करने वालों में ज्येष्ठ होने से तीनों लोकों में ज्येष्ठ, समस्त जगत के एकमात्र शरणभूत अरहंत भट्टारक की शरण प्राप्त करने की भावना से उनका स्मरण करते हैं। उनकी शरण लेना यानी उनके उपदेश के अनुसार वो समझकर आत्मा का स्वरूप अपने में लीन होना, फिर भी बाह्य में उनके नमस्कार उनकी भक्ति करने के परिणाम आए बिना नहीं रहे। आगे देखते हैं दो नंबर का श्लोक ऊपर। कौन सा शार्दूल है कि ऊपर श्रेयो मर्गान भिज्ञा निह भव गहने जाज्वल्य दुख दाव स्कंधे चंक्रम्यमाना नति चकित इमानुद्धरेयं वराकान इत्यारोहत परानुग्रह रस विलसद भावनोपात्त पुण्य प्रक्रांतैरेव वाक्यैः शिवपथमुचितान् शास्तियोर्हंस नोव्या। इस भवरूपी भीषण वनों में दुख रूपी दावानल बड़े जोर से जल रही है। ये दावानल समझते हैं? अनल यानी अग्नि, वो बड़ी बड़ी वो आग लगती है ना वनों में, उसको कहेंगे वो फॉरेस्ट में लगती रहती है, दावानल कहते हैं। तो कहते भवरूपी भीषण वनों में दुख रूपी दावानल बड़े जोर से जल रही है और श्रेयो मार्ग से, श्रेयो मार्ग यानी मोक्ष मार्ग, श्रेय यानी कल्याण, श्रेयस यानी मोक्ष या कल्याण, श्रेयो मार्ग यानी मोक्ष मार्ग, श्रेयो मार्ग से अनजान ये बिचारे प्राणी अत्यंत भयभीत होकर इधर उधर भटक रहे। आप इमेजिन करो, सोचो, जैसा कल्पना करो कि बहुत बड़ा गहन वन है और बहुत बड़ी आग लगी है और रास्ता मिल नहीं रहा है वहां के प्राणियों को, तो कैसे दौड़ा दौड़ी मचाते हो, पता ही नहीं कहां भागना है, बस वो आग से बचना चाहते हैं और यहां वहां दौड़ते रहते हैं। मैं इनका उद्धार करूं इस बढ़ते हुए परोपकार के रस से, विशेष रूप से शोभित भावना से संचित पुण्य से उत्पन्न हुए वचनों के द्वारा, जो उसके योग्य प्राणियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, वे अरहंत जिन हमारी रक्षा करे। देखो देखो ये क्या कहना चाहिए, कौन से अरहंत भगवान, उनका वर्णन क्या किया, देख फिर से पढ़ूंगी मैं। मैं इनका उद्धार करूं इस बढ़ते हुए परोपकार का रस, अरिहंत भगवान को है क्या अश्विन भाई, यहाँ लिखा है नहीं उपचार नहीं, हमने आगे कहाँ पढ़ा है, यानी मैं उद्धार करूं परोपकार का ऐसा रस, ऐसा उनके बहुत रुचि उत्पन्न हुई और उस विशेष रूप रस के विशेष रूप से शोभित भावना से, ऐसी भावना के कारण संचित पुण्य से, कौन सा पुण्य संचित हुआ, ये तीर्थंकर प्रकृति बंदी, ये संचित पुण्य, ये संचित पुण्य से उत्पन्न हुए, यानी यहाँ वे तीर्थंकर प्रकृति बंदी कब बंदी थी, ये भावना तो कब थी, चौथे से लेकर आठवें तक, हाँ ये जो हर समय बनती है वो बंधने वाले को हर समय बंध रही है तीर्थंकर प्रकृति, हम कहेंगे वो सोलस भावना होती, परंतु वो तो क्या ऐसी सोलस भावना, वो सोलह भावना गाते रहे कि क्या करते, वो तो सहज रूप से होती है, उनको ऐसा परिणाम होता है कि ये बात सब जीव जाने, और उनके वो तो तीर्थंकर प्रकृति एक बार बांधना शुरू किया वो तो निरंतर हर समय बनती रहती है। केवल वो नारकी नरक में जाने वाला होगा, दूसरे तीसरे तो अंतर्मुख के लिए वो मिथ्यात्व में जाता है और वहां उत्पन्न होकर फिर बांधना शुरू करते कंटिन्यूअस। कोई देह में जाएगा तो सागरों तक हर समय बंद रही, ऐसा नहीं कि कभी बंधेगी कभी नहीं बंधेगी, ऐसा नहीं है। कीर्तन का प्रकृति बांधने वाले भी कभी साता का बंद करेंगे कभी असाता का करेंगे अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में, परंतु कीर्तन का प्रकृति तो हर समय बन रही है। उनके भी स्थिर अस्थिर वगैरह हम अभी सुबह सीख रहे हैं ना इतनी बात, यानी वो यथायोग्य उसमें परिवर्तन होगा, उनके भी संकलेश विशुद्धि होगी, परंतु फिर भी कीर्तन का प्रकृति का बंध हर समय चल रहा। कोई यहां से सर्वार सिद्धि में गए तो 33 सागर तक कंटिन्यूस बंद रहा है, वहां से माता के पेट में आए तो बंद रहा है, कब तक बंधेगा? आठवें गुणस्थान में तब तक उसके बंधेगी। तो ये इतना पुण्य संचित हुआ है वो पुण्य से उत्पन्न हुए वचनों के द्वारा, इसमें वो निमित्त है। उनकी दिव्य ध्वनि खेलेगी ना, ये कौन से वचन? दिव्य ध्वनि, यानी वो दिव्य ध्वनि के द्वारा, उसको दिव्य ध्वनि का जो उसके योग्य प्राणियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। यदि उनमें इतना अनंत बल है तो पूरे दुनिया का दुख मिटाते ना उनके योग्य, उस वचन के योग्य प्राणियों को मोक्ष उन्हीं को मिलता है जिनके उपादान की योग्यता है, फिर भी उन्होंने उपदेश दिया ऐसा कहेंगे? कहते उसके योग्य प्राणियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। वे अरहंत जिन हमारी रक्षा करे, ये रक्षा ये भक्ति वश ऐसा बोला जाता है, वे रक्षा करें, उन्होंने तो उपदेश दिया है, उस उपदेश को अंगीकार करो तो अपनी रक्षा स्वयं हो जाएगी, कोई दूसरा तो रक्षण करने वाला तो है नहीं है। विशेषार्थ आवाज कैसे बात नहीं, हम पढ़ेंगे आगे। विशेषार्थ जिसमें जीव चार गतियों में भ्रमण करते रहते हैं तथा प्रति समय उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप वृत्ति का आलंबन करते हैं उसे भव या संसार कहते हैं। संसरण करना है ना, संसार जिसको हम घूमते रहना, इसमें जन्म मरण चलता रहता है। आवाज बंद हो गई ना? हेलो 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 हेलो, ठीक। यह भव जो हमारे सम्मुख विद्यमान है नाना दुखों का कारण होने से भीषण वन के तुल्य है। हमें तो ऐसा लगता है नहीं ना, मनुष्य भव है, आनंद हम ले रहे हैं उसका, अच्छे है संयोग, भीषण वन नहीं लगता। इसमें होने वाले शारीरिक मानसिक आगंतुक तथा सहज दुख दावागल के समान है। आगंतुक इन्हें अचानक आने वाले और फिर उस भव संबंधी जो सहज दुख है वो भयानक अग्नि के समान है। जैसे वन में लगी आग वन के प्राणियों को शारीरिक और मानसिक कष्ट के साथ, मानसिक इन्हें भय लग रहा है मेरा क्या होगा, ये मानसिक भय है, शारीरिक में वहां तो जलने का गर्मी का तो दुख हो ही रहा है, उसके साथ अंत में उनका विनाश ही कर देती है, वैसे ही ये संसार के दुख भी अंत में विनाशक ही होते हैं। विनाशक यानी नाश करते हैं, क्या होता है वो तो निगोद आदि में बिन पर्याय में चला जाता है अनंत काल तक। यह दुख ज्वाला बड़ी तेजी से रह रहकर प्रज्वलित होती है, इससे भयभीत होकर भी बेचारे प्राणी इधर उधर भटकते हुए उसी की ओर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें श्रेयो मार्ग का ज्ञान नहीं है। कल्पना से कुछ अन्य ही सोचते रहते हैं और अपनी मति कल्पना से धर्म मानकर कुछ करना भी चाहते हैं और इससे छूट नहीं सकते। कितने दुख तो इन्हें कल्पना से ही खड़े कर दिए, और शारीरिक दुख का भी अपने को शरीर मान लिया इसलिए ज्यादा हो रहा है। इधर उधर भटकते हैं यानी कुदेवादी के पीछे लगते हैं, या जो अपने को उसका उपाय सूझे वो करते हैं। पीड़ा सहन नहीं होती तो इंद्रियों के विषयों से मैं सुखी हो जाऊं ऐसा मानकर उसके पीछे झपट्टे मारते हैं जैसे को, तो ये क्या है, इधर उधर भटकते हैं। कोई पर ये तेरा कल्याण होगा ये करो तो करने को तैयार, ये सोचता नहीं उसके बारे में। हम तो यहाँ सुबह देखते हैं हमारे यहाँ पीपल का वृक्ष है, हाँ तो कुछ शक्कर डालेंगे उसमें, उसको पैर छुएंगे, उसके क्या क्या करेंगे। वो तो एक इंद्रिय जीव, एक भी जीव नहीं, वहां तो असंख्या जीव पड़े हैं उस एक पेड़ में, और ये पंचेंद्रिय उनके पूजा करके मानता है कि मुझे सुखी कर देगा। अभी हमने रत्नगर शावकाचार में देखा ना, देव संबंधी इसकी इतनी मिथ्या मान्यताएं चलती है, देव मूर्ता है, गुरु मूर्ता है, पाखंड मूर्ता है, लोक मूर्ता जिसको कहेंगे, उसके पीछे पागल की जैसे चलता रहे, और दुनिया ऐसी चल रही है जो हम देखते हैं आजू बाजू में, तो यही बात चलती रहती है। वही मैंने बोला तीन तीन मूर्ता बताया ना, विद्या देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता कहो या पाखंड मूर्ता कहो, कि सोचता नहीं है कि मैं जिसको नमस्कार कर रहा हूँ ये योग्य है भी या नहीं है। नमस्कार तो अपने से ऊंचे को किया जाता है और उनके गुणों के लिए किया जाता है, जिसको भगवान कह रहा है और वो क्या मानकर उनकी पूजा कर, ये मेरा कुछ कर देगा ऐसी उसके पीछे मान्यता है। कोई किसी का तो कुछ करने वाला तो है ही नहीं है,
वैसी मान्यता नहीं है वहाँ पे।
कौन सी नहीं है, वो कुछ नहीं करने वाला है,
वो कुछ करेंगे
ऐसी मान्यता है, वही तो मैं कह रही हूँ। भगवान मेरा कुछ कर देगा, और नहीं भी किया तो वहाँ जाके भगवान को गाली भी सुनाएगा।
आज कर मैंने आज कर ये बात ऐसी है कि जिनके अभी मैं दूसरों का भला करूं ऐसी इच्छा बाकी है, और जहाँ इच्छा है वहाँ तो दुख ही है, जो स्वयं दुखी है अन्य को क्या सुखी करेगा।
हाँ देखो ठीक है, हम पढ़े यहाँ पे श्रेय मार्ग का ज्ञान नहीं है। देखो श्रेय है मोक्ष, हमने अभी देखा था ना, श्रेय मोक्ष को कहते हैं, संसार के बंधन से छूटकर जीव जो स्वरूप लाभ करता है उसी को श्रेय या मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कोई प्लेस नहीं है, वो जीव की अवस्था है, अपना स्वभाव जैसा है वैसा पर्याय में प्रकट होना ही पूर्ण रूप से, यह कहना स्वरूप लाभ करता है उसी को श्रेय या मोक्ष कहते हैं। श्रेय का एक अर्थ होता है कल्याण भी, तो उसी में जीव का कल्याण, उसका मार्ग या प्राप्ति का उपाय व्यवहार ने से तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, किंतु निश्चय ने से रत्नत्रय में स्वात्मा ही मोक्ष का मार्ग है। देखो क्या कहना चाहते हैं, मोक्ष का मार्ग क्या है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। उसको व्यवहार ने से क्यों कहा, एक तो भेद किया और वो पर्याय को अलग अलग करके बताया, इसलिए उसको व्यवहार ने भेद कर करके कथन करता है। अब दूसरी निश्चय ने से क्या बताए, रत्नत्रय में स्वात्मा, वो उस पर्याय से अभेद है, कोई उसके भेद है ही नहीं है। भेद तो हमने समझाने के लिए, समझने के लिए किए थे, परंतु एंटिटी वो वस्तु रूप से एक ही है, उसमें कोई छकले नहीं है। आत्मा ही स्वयं किस रूप से परिणत है अभी वर्तमान में, रत्नत्रय रूप से, यानी द्रव्य उस पर्याय रूप से परिणत है। अब मान लेते हैं नौ नंबर की पर्याय रूप से परिणत द्रव्य दस नंबर के पर्याय का कारण बताना, ये यहाँ बता रहे कि रत्नत्रय रूप से परिणत स्वात्मा ही मोक्ष का कारण है। यहाँ फिर से पढ़ेंगे, वो स्वयं मोक्ष का मार्ग है और उसको, उस मार्ग को आगे वाला मोक्ष का कारण बताया। यहाँ तो उसको मोक्ष मार्ग कहा, पहले में पहले क्या बताया, भेद करके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। ये कारण की चर्चा बाद में करेंगे, अब कहेंगे वो सब अभेद है। तो जो आत्मा रत्नत्रय रूप से परिणत हुआ है, उसमय हुआ है, वह आत्मा स्वयं मोक्ष मार्ग। ये पद्धति हमने पहले भी देखी प्रवचन सार में, तो कुंकुंदाचार्य ने कहा है जिस समय आत्मा क्रोध रूप परिणत हुआ है, वो स्वयं क्रोध है, क्रोधी भी नहीं, क्रोध है। जिस समय पाप रूप परिणत हुआ है, आत्मा स्वयं पाप है। पापा कहा ना, बच्चे भी अपने पापा को पापा कहते हैं,
पापा खुश,
पापा हा। हाँ, सातवा ही मोक्ष का मार्ग। इससे या तो वे बिल्कुल ही अनजान है, या निस्संशय रूप से नहीं जानते। क्या कहते, या तो जिससे मैंने कुछ जानते ही नहीं, सुना भी होगा तो कहते उसमें संशय है, ऐसा लगता है, हाउ इज इट पॉसिबल, यह है कि नहीं सच्चा, और ये कैसे हो सकता है। तो कहते निस्संशय रूप से नहीं जानते, अथवा व्यवहार और निश्चय रूप से पूरी तरह नहीं जानते। उन्हें देखकर, यानी ऐसे अनजान जीवों को देखकर, जिनके मन में यह भावना उठती है कि नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित इन तीनों लोकों के प्राणियों का मैं उद्धार करूं, उन्हें इन दुखों से छूटने का उपाय बतलाऊं, यह भावना ही मुख्य रूप से अपाय विषय नामक धर्म ध्यान रूप, ये धर्म ध्यान के नाम मालूम है, भेद
अपाय विषय विभाग विषय,
आज्ञा विषय ने जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है उस संबंधी चिंतन करना, वो आज्ञा विषय धर्म ध्यान, विषय विषय ने उस संबंधी चिंतन, विपाक विषय ने कर्मों का कैसे फल मिलता है उस संबंध में जो विचार होता है, केवल वो विचार नहीं, वो विचार से हटकर नहीं, वो भेद ज्ञान चल रहा है, फिर आत्मा को पकड़ लेना, वो उसमें गर्भित है, उसको कहेंगे विपाक विचय। अपाय विचय ने उसका उपाय क्या करना, ये कर्म के जो उदय है उससे छूटने का जो मार्ग है वो अपाय विचय। यहाँ वही बात बताइए, अपाय विचय नामक धर्म ध्यान रूप तीर्थंकर भावना है, यानी तीर्थंकर जो कर्म है नाम कर्म, वो इस के कारण बनता है। महापुराण में गर्भान्वय क्रिया के वर्णन में तीर्थंकर भावना का उल्लेख है। महापुराण में जो अन्य अन्य क्रियाएं बताई है, वहां तीर्थंकर भावना के संबंध में बताया, मैं एक साथ तीनों लोकों का उपकार करने में समर्थ बनूं, इस प्रकार की परम करुणा से अनुरंजित अंतः चैतन्य परिणाम प्रति समय वर्धमान होने से, ये प्रति समय भी बात है ना, वो ये तो बुद्धि अबुद्धि पूर्वक में चलता ही रहता है, इसमें प्रति समय का परोपकार का जब आधिक्य होता है, उससे दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाएं होती, जो परम पुण्य तीर्थंकर नाम कर्म के बंध में कारण होती है। अभी हमने उसी की चर्चा की, उसी का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। ये भावनाएं सभी के नहीं होती, इनका होना दुर्लभ। अब ये हमको सबको होती है, वो नहीं होती है, वो तीर्थंकर की विभूति देखकर अरे हम भी ऐसा हो जाए ऐसा मानता है, मिथ्या दृष्टि, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो वो तो पुण्य बांधने के लिए नहीं कर रहा, वो बंध की भावना नहीं है उसको, मैं तीर्थंकर पदवी पुण्य बांधू वो नाम कर्म, क्योंकि जिसको बंध की इच्छा है उसके तत्व संबंधी भूल चल। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के पश्चात केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर, ये बंध तो चल रहा था आठवें गुणस्थान तक हमने देखा, और तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब होगा? जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब, तेरहवें गुणस्थान। अब केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर बिना इच्छा के, ये आशा जी बिना इच्छा क्यों कहा? कि बिना इच्छा के भगवान अरहंत की वाणी फिरती है। इतने दिन तो इतनी इच्छा कर करके प्रकृति बांधी, अब इच्छा क्यों नहीं है? बहुत अच्छा, वो वीतरागी है, बारहवें गुणस्थान में पूर्ण वीतरागी हुए हैं और अभी यहाँ तो सर्वज्ञता भी प्राप्त हुई है, केवल ज्ञान हो गया, तो उनके तो इच्छा होती ही नहीं है, फिर भी सहज रूप से वाणी खिरती। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है यहाँ पर। चूंकि वे वीतराग होते हैं, चूंकि का अर्थ होता है क्योंकि वे वीतराग होते हैं, अतः यानी इसलिए यहाँ विवक्षा बोलने की इच्छा नहीं होती। कहा भी है जो समस्त प्राणियों के लिए हितकर है, वर्ण सहित नहीं है। अश्विन भाई इसका अर्थ क्या है? वीरेश भाई आप बताइए। क्या क्या कहते क्या क्या जोर से जरा जोर से बोलो, उनको माइक देना।
शाम को
सुबह तो इतने प्रश्न पूछता है कि उनको चुप बिठाना पड़ता है। हाँ, इसीलिए पूरा वर्ण रहते ने क्या वर्ण से, वर्ण का अर्थ क्या है मालूम है? अक्षर, अक्षर रहित है। वर्ण यानी अक्षर, वर्ण यानी वो रंग भी होता है, पर यहाँ वर्ण रहित का अर्थ क्या है? अक्षर रहित यानी निरक्षरी होती है। दिव्य ध्वनि ये ओम ऐसा जो हमने वो कुछ आकार में उसकी स्थापना कर दी उस दिव्य ध्वनि के लिए, या ओम ऐसा हमने मुंह से बोला, परंतु ऐसे कोई अक्षर वाली नहीं है। हमने ओ और म करते हैं, ऐसे अक्षर नहीं है उसमें, वो निरक्षरी। जैसे मेघ गर्जना होती है तो हम गड़गड़ कुछ भी कहेंगे, उसके लिए कुछ भी हम अपनी भाषा में बताएंगे, परंतु वो तो निरक्षरी है। ऐसे ही दिव्य ध्वनि कैसी है? तो निरक्षरी, पूरे सर्वांग में से खिरती। तो कहते वर्ण सहित नहीं है, वर्ण का अर्थ अक्षर, अक्षर सहित नहीं है, निरक्षरी है। जिसके बोलते समय दोनों ओष्ठ नहीं चलते, ओठ नहीं चलते, तो अंदर जीभ तो चलती होगी, ये यहाँ वोकल कॉर्ड तो चलते हुए, तो कहते कुछ नहीं चलते। हम बोलते तो क्या होता है, जीभ या तो दांत से अथरती है, ऊपर चल पेलेट पर जाती है, या गले में से बोलते कुछ अक्षर, कुछ जीभ से होते हैं, कुछ ओठ से होते हैं, ऐसे उनके नहीं होती। जो इच्छा पूर्वक नहीं है, क्योंकि उनके तो इच्छा ही नहीं है, न दोषों से मलिन है, निर्दोष वचन है उनके, जिनका क्रम श्वास से रुद्ध नहीं होता। क्या बात, हम बोलते हैं कुछ भी बोलो, आप गाना भी गाओ, तो हम वो तो ओ, क्योंकि जब तक वो श्वास छूटता है, फिर भी बीच में श्वास लेकर फिर छोड़ना पड़ेगा, तभी वाणी छूटेगी। तो ये बात पहली यहाँ पर मैंने पढ़ी, अच्छी बात बताई कि श्वास से रुद्ध नहीं होता, क्योंकि वो तो वोकल कॉर्ड का या उसका कोई वहाँ प्रयोजन ही नहीं, पूरे सर्वांग में से खिर रही है, इसलिए श्वास के कारण वो बीच में रुकती नहीं। बहुत अच्छा। तो जिसका क्रम श्वास से रुद्ध नहीं होता, यानी रुकता नहीं, जिन वचनों को पारस्परिक यानी परस्पर में वैर भाव त्याग कर प्रशांत पशुगणों के साथ सभी श्रोता सुनते हैं, क्या कहते हैं? ये ऐसा है ना, कुछ पशुओं में वो तो उनके परस्पर का वैरभाव होता है, मालूम है, गाय है और सिंह है, सांप और निवला है, मोर के साथ किसको लेते हैं? सांप को ही लेते हैं, मोर और सांप को ही लेते हैं, यानी उनका जात यानी परंपरा वो जाति में वैर होता ही होता है। कुत्ता और बिल्ली है, वो देखते हुए भोंकना चालू करते हैं, वो बंदर है और कुत्ता है, ये तो ये जो उनमें तो है पारस्परिक वैर भूल कर त्याग कर प्रशांत यानी विशेष रूप से शांत है, प्रशांत पशुगणों के साथ सभी श्रोता सुनते हैं, यानी वहां तीरंज भी सुनते हैं, मनुष्य भी आते हैं, देव भी है, है ना। नारके आते होंगे कि नहीं होंगे? नहीं आते। समस्त विपत्तियों को नष्ट कर देने वाले सर्वज्ञ देव के अपूर्व वचन हमारी रक्षा करें। ऐसे ये अपूर्व वचन है, अभूतपूर्व, जैसे पूर्व में नहीं हुए ऐसा नहीं है, अपूर्व ही ने वो तो अलौकिक ऐसे जो है, इसलिए अपूर्व कहेंगे उसको। आचार्य जिनसेन स्वामी ने अपने महापुराण में लिखा है कि भगवान के मुखरूपी कमल से मेघों की गर्जना का अनुकरण करने वाली दिव्य ध्वनि निकल रही थी। ये कहने की पद्धति मुख कमल से निकली, परंतु निकलती तो सर्वांग से। यद्यपि वह एक प्रकार की थी, तथापि सर्व भाषा रूप परिणमन करती थी। क्या कहा, इतने दिन तो अचरज लगता थे, हाउ इज इट पॉसिबल। अभी तो क्या होता है, वो पूरा इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्रेंस चलती है, वो अपने अपने देश की भाषा में बोलते हैं और सबके कानों में अपने अपने भाषा में सुनाई देते हैं, पता है ना। हाँ, वो तो हम मालूम है हमको, इसमें अचरज नहीं। यहाँ तो ये इसलिए इसका नाम ही दिव्य ध्वनि, अपनी अपनी भाषा में सभी श्रोता सम होते हैं। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा, तीरंज भी उनके अपनी भाषा में समझ लेते। आगे आचार्य ने लिखा है, हाँ इसीलिए अभी सच लगता है। जब तक साइंस के द्वारा कोई बातें सामने नहीं आती है, तब तक ये ऐसा लगता है ना, क्या पुराण में ऐसे लपेटबाजी चलती है। जब तक सर्वज्ञ का स्वरूप पता नहीं है और उनके दिव्य ध्वनि का स्वरूप पता नहीं, तब तक ऐसी शंका, ऐसी संशय, ऐसी तो बातें चलती रहती। आगे आचार्य ने लिखा है कि कोई लोग ऐसा कहते हैं कि दिव्य ध्वनि देवों के द्वारा की जाती है, किंतु ऐसा कहना मिथ्या है, क्योंकि ऐसा कहने में भगवान के गुण का घात होता है। यानी देव कुछ वो दिव्य ध्वनि को करने वाले नहीं है, वो दिव्य ध्वनि तो भगवान के निमित्त से खिल रही है। इसके सिवाय दिव्य ध्वनि साक्षर होती है, क्योंकि लोक में अक्षरों के समूह के बिना अर्थ का ज्ञान नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं, वो निकली तो निरक्षरी, श्रोता के कान में पहुंचे तब उसको अपने अपने वो भाषा में उसका ज्ञान होता, इसलिए उसको ऐसे, इसलिए भी उसको दिव्य ध्वनि कहते हैं, इसलिए भी उसको साक्षर कहते हैं। उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। यह दिव्य ध्वनि प्रातः, मध्यान्ह यानी दोपहर, सायं और रात्रि के मध्य में 6-6 घड़ी तक, अर्थात एक बार में 1 घंटा और 44 मिनट तक खिलती है। ऐसा आगम में कथन है, 2 घंटे 6-6 घड़ी है ना, देखो 2 घड़ी का 48 मिनट होता है ना, 6-6 घड़ी में कितना हुआ, 48 × 3 144 हो जाएगी। हाँ, उन्होंने वो तो 100 का 1 घंटा कर दिया, 144 हो गए ना, शायद उन्हें 120 हो गए, 24 हो जाएगा ना, 2 घंटे 24। एक 144 है ना उसका, उन्होंने ऐसा कुछ गलत हो गया, हाँ 144 मिनट हो जाएगी, बाजू में लिख के रखा 144 मिनट इज इक्वल टू 2 घंटे और 24 मिनट। अंदाजा, और ऐसे 4-4 बार भी खेल सकते हैं। हाँ 10 घंटे हो जाते, रात्रि मध्य रात्रि में कभी कभी, चक्रवर्ती आदि आते हैं, विशिष्ट कोई पुण्यवान जीव तो रात्रि में भी कीर्तन,
मतलब एक टाइम 2 घंटा 24 मिनट्स
कंटिन्यूस में। हाँ ये बताया ना, प्रातः मध्यान्ह वो 6 घड़ी यानी 3 घड़ी और 3 घड़ी इस तरह से प्रातः के, यानी जैसे हम कहते हैं अंतर्मुख पहले और बाद में, वैसे इसको ले जाओ 3-3 घड़ी लेना अंतर्मुख नहीं, 2 घड़ी का बड़ा अंतर्मुख होता है, यहाँ तो 3 घड़ी प्रातः के पहले और 3 घड़ी बाद इस तरह से 6 घड़ी हमको लेना है। तो वो जो ज्वाइंट जो संध्या काल जिसको संधि काल कहते हैं, यानी रात्रि समाप्त हुई और सुबह होने वाली है, हाँ तो उसमें 6 घड़ी पहले और बाद में मिलकर मध्यान्ह, अभी देखो ना 12 बजे हम मध्यान्ह कहेंगे और टोटल 2 घंटा 24 मिनट है, तो 1 घंटा और 12 मिनट पहले और 1 घंटा 12 मिनट बाद में, ऐसे ले सकते हैं। हो गया समय, चलो जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो।